मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। 15 जुलाई 2015 के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की फरवरी 2016 में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं अनूप लोचिप विशाखापट्टनम से और मदन सापरा देहरादून से। अनूप और मदन, मैं आप दोनों साथियों का एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों इसी के साथ ही जैसा कि हम लोग अभी सिविल सर्विस के एग्जाम के जो रिजल्ट्स आए हैं उनकी एनालिसिस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस एनालिसिस से आपको कम से कम इस बात पर धीरे धीरे यकीन होता जा रहा होगा कि सच में पढ़ाई में कंटिन्यूटी की कितनी इंपॉर्टेंस है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बल्कि जिनको हम जो थोड़ी से ही भले हम पढ़ रहे हों उनको बहुत गहराई से भी न कहें तो बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। फ्रेंड्स, यदि इस तरह के विचार आपके दिमाग में आ रहे हों और इस तरह के विचारों के प्रति आपका विश्वास बढ़ रहा हो, तो डेफिनेटली मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सब अपने ओल्ड माइंड को ड्रॉप करें, यानी कि अपने आप को खाली करें और फिर नया माइंड जो वहाँ लगना चाहिए उसके लिए आप कोशिश करें। दुर्भाग्य ये फ्रेंड्स कि माइंड जैसी चीज के लिए ऐसा कुछ है नहीं कि ऑपरेशन करके पुराने को निकाल दिया जाए और उसकी जगह पर नया लगा दिया जाए। वो तो धीरे धीरे आपको कोशिश करके मनोवैज्ञानिक स्तर पर उसे रिप्लेस करना होता है। और सच पूछिए तो इस ऑडियो गाइडेंस के जरिए मैं इसी तरह की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, चाहे वे स्टूडेंट जो यहाँ क्लास में आ रहे हैं, फिर वे जो नहीं भी आ रहे हैं, मेरी अपील है कि प्लीज़ जो हम लोग इतनी एनालिसिस कर रहे हैं, मेरा उद्देश्य आप लोगों को सिर्फ आंकड़े बताना नहीं है। आंकड़े तो आप लोगों के पास भी हैं, अवेलेबल हैं वेबसाइट पर, बड़े आराम से आप भी देख सकते हैं, उनको पढ़ भी सकते हैं, काफ़ी कुछ समझ भी सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि उन आंकड़ों के पीछे जो कहानी है सिविल सर्विस की तैयारी की या जो सच्चाई है, मुझे लगता है कि शायद उस सच्चाई को आप लोगों की तुलना में थोड़े से बेहतर तरीके से शायद मैं देख सकता हूं, क्योंकि लंबे लंबे अरसे से मैं इससे जुड़ा हुआ हूं और वही जो मैं देख पा रहा हूं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और दोस्तों कम से कम मुझे तो इस बारे में तनिक भी संदेह नहीं है कि हम ये जो कुछ शेयर कर रहे हैं ये आपके आगे की प्रिपरेशन के लिए एक तरह से रामबाण औषधि की तरह काम करेगा, आपको बहुत जबरदस्त रूप से लाइट हाउस की तरह सही रास्ता दिखाएगा। तो मित्रों एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उन दोस्तों के नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने अभी सिविल सर्विस के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में मेरे पास ढेर सारी इंफॉर्मेशन भेजी है। सच पूछे तो इतने इंफॉर्मेशन और इतने मेल इससे पहले मेरे पास कभी भी नहीं आए, तो मैं इन साथियों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने कल भी कहा था, ये प्रूफ करता है कि आप लोगों में ऑडियो को लेकर कितना उत्साह है। आप मुझे एक तरह से कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उन कंटेंट को कुक करके या जिसको कह लीजिए भोजन बनाकर मैं आप लोगों को काम की चीज बता सकूं, परोस सकूं। तो मित्रों डेफिनेटली जब सामने वाले उत्साही होते हैं तो बताने वाले उनसे कहीं और भी अधिक उत्साह से भर उठते हैं, और मुझे फिलहाल इसी तरह की कुछ अनुभूति हो भी रही है। तो मित्रों जिन्होंने अलग अलग तरह की सूचनाएं भेजी हैं जिनसे मैं बहुत एनरिच हुआ हूं एज फार एज द इंफॉर्मेशन ऑफ द सिविल सर्विस रिजल्ट इज कंसर्न, उनके नाम हैं अशोक सिंह हैं आजमगढ़ से, अजय प्रसाद बक्सर से, रितेश कुमार साक्य, जसविंदर चौहान, कृपेश पटेल, सुरेश यादव दिल्ली से, रजत बोलपुर से, ओम मिश्रा बंगलुरु से, अंबिकेश विशाखापट्टनम से, गोपाल तिवारी नई दिल्ली से, गुलशन कुमार पटना से, रजत तिवारी देवरिया से, दीपिका कसाबे पुणे से, दिव्येश पांचाल सुरेखा मुंबई से, नीरज कुमार और अंगद सिंह, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने भेजी है, हालांकि वो बहुत सी हैं, मैं उनमें से कुछ इंफॉर्मेशन जो ऐसी हैं जो नई हैं, दूसरी चीज वो आपके सीधे सीधे काम की हैं, उनके आधार पर मैं आज आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो भेजी है वो रजत का है जो बोलपुर से है और मेरे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट भी रहे हैं और काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वो एक्टिव बहुत है, लगातार मेल आते रहते हैं और उसे पता लग जाता है कि हाँ तैयारी का क्या लेवल है और स्टूडेंट में कितना उत्साह बना हुआ है। उन्होंने एक बहुत अच्छी एनालिसिस भेजी है, 5 पॉइंट्स उन्होंने भेजे हैं लिख करके और मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम उन्होंने एक नया तरीका एडॉप्ट किया है और डेफिनेटली उन्हें कहीं से मिला होगा और अगर नहीं भी मिला हो तो अपनी तरफ से भी किया हो तो बड़ी बात है और यदि मिला भी हो तो उनको लगा कि हमारे बहुत काम की चीज़ हो सकती है तो उनका ये निर्णय बिल्कुल सही था। उन्होंने जो भेजा है फ्रेंड्स, उसका फर्स्ट पॉइंट है कि इंटरव्यू में जो स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हैं वो हैं मिनिमम 83 मार्क्स। आपको मालूम है कि इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है, राइट? और याद रखें कि ये जो 83 मार्क्स की वो जो बात कर रहे होंगे, मैं समझ सकता हूं कि वो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए ही कर रहे होंगे, क्योंकि जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होते हैं उनकी फिर चीजें हमारे पास शायद उतने अवेलेबल नहीं होते, ये मैं अंदाजा लगा रहा हूं। और इसको मैं चाहूंगा कि रजत और क्लियर करें कि रेंज ऑफ इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं ये उन्हीं के ही मार्क्स होंगे डेफिनेटली, क्योंकि बाकी जो दिए हुए हैं वो सेलेक्टेड कैंडिडेट के ही हैं। तो ये मैं मान करके चल रहा हूं कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनमें जो सबसे कम जो मार्क्स मिले हैं वो 83 और जिनको सबसे अधिक मार्क्स मिले हैं वो हैं 217। ये उन्होंने पहली बात कही है 275 में, नो डाउट 275 में 217 मार्क्स मिलना एक बड़ी बात है। मेरे पास एक और भी इंफॉर्मेशन आई है जो मुझे एग्जैक्ट अभी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन चूंकि मेरे ध्यान में है तो उसको मैं यहां रिपीट करना चाहूंगा। किसी स्टूडेंट ने मुझे लिखा है कि 150 से लगभग 150 ऐसे स्टूडेंट हैं या 157 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 200+ इंटरव्यू के मार्क्स मिले हैं, 200+ इंटरव्यू के मार्क्स मिले हैं और यहां हम देख रहे हैं कि जो रेंज है 83 से 217। फ्रेंड्स, इससे आप क्या अर्थ लगाते हैं? नो डाउट कि 83 नंबर मिलने पर भी आप सिलेक्शन लिस्ट में आ जाएंगे लेकिन आप बहुत नीचे होंगे और संभावना 217 नंबर लाने तक की है। और आप देखिए कि अगर हम इसी को कंपेयर करने लगे, ईरा सिंगल जी को 162 मार्क्स मिले और पिछले साल के जो टॉपर थे हमारे गौरव अग्रवाल उनको मिले थे 206। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर आपको टॉप लिस्ट में नाम चाहिए जिसको हम आईएएस टॉपर कहते हैं तो हम आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके इंटरव्यू के मार्क्स 200 के आसपास हो, थोड़े से कम में भी चल जाएगा लेकिन कोशिश होनी चाहिए। यानी दोस्तों कि आपको सारा जोर केवल प्री पर ही नहीं देना है, मेंस पर ही नहीं देना है, बल्कि इंटरव्यू की तैयारी भी साइमल्टेनियसली समानांतर रूप से चलते रहना चाहिए, राइट? ये फर्स्ट मैसेज निकलता है। दूसरा देखिए, रेंज ऑफ मेंस के मार्क्स, मुख्य परीक्षा में मार्क्स के कितने रेंज, क्या रेंज रही है। फ्रेंड्स, वो रेंज बहुत बड़ी है। रेंज जो इन्होंने दिया है, जो मिनिमम मार्क्स हैं 533, और जो हाईएस्ट मार्क्स हैं कल हम लोग सुन चुके हैं ईरा सिंगल के हैं 920। मैं फ्रेंड्स, यहां जब हम एक अपने लिए कोई प्लान करते हैं तो डेफिनेटली हम अपवादों पर प्लान नहीं करते हैं, है ना, हम सिस्टम पे प्लान करते हैं जो बार बार घटती है। इसमें मैं ये करेक्शन जरूर करना चाहूंगा कि डेफिनेटली ईरा सिंगल ने 920 मार्क्स लाकर के एक रिकॉर्ड जैसा बनाया है, वो एक अद्भुत बात है, इसके लिए वो बधाई की पात्र हैं। जब उनके डिटेल्स में मार्कशीट हमें मिलेगी तो हम उसके एनालिसिस करेंगे, लेकिन यहां जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हम इस रेंज को घटाकर मैं 800 के आसपास लाना चाहूंगा। जो बहुत स्टूडेंट्स ने 800 नंबर स्कोर किए, 800 मार्क्स स्कोर किए, तो इस रेंज को हम मान सकते हैं 533 से 800। फ्रेंड्स, 800 में इसलिए भी कह रहा हूं कि पिछले साल के जो टॉपर हैं गौरव अग्रवाल, उनके अगर हम रिटेन के मार्क्स देखें तो 769 है, शायद 700, मोटे तौर पर 770। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि अगर 770 पिछली बार टॉपर के थे, वो रेंज वही लगभग दिखाई देती, 770, 760, 750, तो हम कह सकते हैं कि 770 को अगर हम इधर ले लें 800 के आसपास, तो इस बार का जो स्कोर है लगभग लगभग 30-40 नंबर हायर है। कट ऑफ मार्क्स आएंगे तो हमको और पता लगेगा, मतलब इस बार का स्कोर थोड़ा सा बेटर रहा है। और है जो मेरे पास दो स्टूडेंट्स ने मार्कशीट भेजे हैं, दो स्टूडेंट्स की मेरे पास मार्कशीट आई है, एक अनन्या है, उनकी एक रैंकिंग है शायद 20-25 रैंकिंग के आसपास है, एक और स्टूडेंट है जिनकी रैंकिंग भी अच्छी बेहतर 25-30 के आसपास रैंकिंग है, मैंने उनकी डिटेल में मार्कशीट देखी है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम एक एक चीज को लेकर के चलते हैं ताकि आपके दिमाग में चीजें बिल्कुल घपचप ना हो, बिल्कुल मिक्स ऐसे मिक्स ना हो जाए कि आप चीजों को फिर पहचान ही नहीं पा रहे हैं। तो मित्रों मुझे ये लगता है कि हम इसको 800 लेकर के चल सकते हैं, 533 to 800। इसका मतलब है कि जो रेंज है 270 नंबर तक की है मेंस में, और स्टूडेंट है हमारे पास, आप अगर आप देखें तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट को आप हम लेकर के चलते हैं तो लगभग 1250 मोटे तौर पर 1236 है 1250, तो 1250 स्टूडेंट्स के बीच में जो मार्क्स रिटेन मार्क्स का जो डिफरेंस है वो है लगभग लगभग 270, राइट। लेकिन फ्रेंड्स ये जो 533 है इसको थोड़ा सा आपको इस रूप में देखना पड़ेगा कि जो मार्क्स के जो कट ऑफ आते हैं वो जनरल कैटेगरीज, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ये जो चार कैटेगरी है इनके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और डेफिनेटली इस 533 मार्क्स में इन चारों कैटेगरी के स्टूडेंट्स शामिल हैं। तो इस पर हम कोई बहुत बड़ा कमेंट अभी अलग अलग कैटेगरी वाइज नहीं कर सकते, जनरल हम कर सकते हैं कि 270 मार्क्स का डिफरेंस है। दोस्तों अभी मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बता रहा था, इंटरव्यू के इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहा था, और अभी हम रिटेन के मार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक मुझे स्टूडेंट्स ने मुझे प्रोवाइड किया है और वो ये है कि जो निशांत जैन हैं जिनकी 13th रैंक आई है, जो हिंदी मीडियम से थे, मतलब हिंदी मीडियम को अगर आप लें तो वो टॉपर्स कह सकते हैं, लिटरेचर भी इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हिंदी लिटरेचर था जिनके बारे में हम लोगों ने बात की है, उनकी जो मार्कशीट है उसमें उनके जो टोटल मार्क्स मतलब जो रिटन में है वो 851 है और इंटरव्यू में है 150, मतलब इंटरव्यू में उनके मार्क्स 150 हैं, सोचिए। और अगर जैसे कि हम देख रहे हैं ना कि लगभग 115 स्टूडेंट, सॉरी जो मैंने आपको एक आंकड़ा बताया था कि 200 नंबर से अधिक, 200 नंबर के आसपास पाने वाले, 200 या 200 से अधिक इंटरव्यू में पाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, तो उनकी एग्जैक्ट संख्या है मित्रों, मुझे वो मिल गई 115, और ये जो जिस स्टूडेंट को 13th रैंक मिली हुई है इंटरव्यू में उसको इस 115 में मार्क्स नहीं मिले। अगर 115 में मार्क्स मिल गए होते तो आप सोचिए कि पोजिशन क्या होती, पोजीशन बहुत बेहतर होती, जबकि इनको मार्क्स मिले इंटरव्यू में 150, यानी कि लगभग लगभग 50 नंबर ये और स्कोर कर सकते थे, ये हालत होती है दोस्तों। जबकि अगर इनके हम सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स लें कि इनके सॉरी हम अगर इनके केवल रिटेन के मार्क्स लें तो रिटेन में ये थर्ड हाईएस्ट, निशांत जैन रिटेन में थर्ड हाईएस्ट पर है, लेकिन इंटरव्यू में 150 नंबर मिलने के कारण ये 13th पर चले गए, यानी कि अगर इंटरव्यू में भी इन्होंने अपने को संभाल लिया होता तो इनके मार्क्स बहुत, मतलब इनकी रैंकिंग जो है वो बहुत अच्छी हो सकती थी। तो मित्रों मैं आपको ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें बता रहा हूं ताकि आपको हर स्टेज की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए। मित्रों आपको एक सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा और शायद सुखद आश्चर्य होगा कि देखिए कि सिविल सर्विस में जो बोर्ड होता है वो कैसे इस कैंडिडेट को जज करता है, उनके क्या आधार होते हैं, इंटेलेक्चुअलिटी क्या होती है, एनालिसिस पावर क्या होता है, पर्सनालिटी क्या होती है, नॉलेज क्या होती है, इनके बारे में आप बहुत बंधी बंधाई धारणा लेकर के मत चलिए। ये मत सोचिए कि सारी किताब रट ली है तो बहुत इंटेलेक्चुअल हो गया है या उसके पास बहुत नॉलेज हो गया है या उसकी एनालिसिस पावर बहुत बढ़ गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मित्रों। और मैं आपको जो तीसरा आंकड़ा देने जा रहा हूं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है कि एक कैंडिडेट जिसकी रैंकिंग 1235वीं है, 1235, मतलब सेकेंड फ्रॉम द लास्ट, आखिरी से दूसरा। 1236 कैंडिडेट शायद टोटल लिस्ट बनी है, 1235 है। मालूम है कि उनको इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले हैं? उनको इंटरव्यू में मार्क्स मिले हैं दोस्तों 200। आप सोचिए, अब हमको नहीं मालूम है कि, बट नेचुरल है कि अगर 200 मार्क्स उनको हाई वहां मिले हैं इंटरव्यू में और रैंकिंग बहुत नीचे है, मतलब वो स्टूडेंट जो 1235वीं रैंक पर आ रहा है 200 मार्क्स इंटरव्यू में लेकर के, आप सोच सकते हैं कि पर्सनालिटी तो है, वहां जो पूछा जा रहा है वो जवाब दे रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस और वो सारी चीजें शो हो रही हैं, और बोर्ड को लग रहा है कि नहीं ये बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है, लेकिन रिटेन में उनके मार्क डेफिनेटली बहुत कम रहे होंगे, तभी तो इतनी पुअर रैंकिंग मिली, अदरवाइज तो बहुत हाईएस्ट रैंकिंग होती। इसका मतलब है कि आप मेंस के मार्क्स आपके लिए कितने कितना मायने रखता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ आंकड़े थे जो मैंने आपको बताए हैं, और कुछ जो थोड़े से और थोड़े से जो इंटरेस्टिंग जैसे आंकड़े हैं वो मैं आपको एक दो चीजें और बता दूंगा, मैं बताना चाहूंगा। मैंने बताया कि एक इंटरव्यू में एक स्टूडेंट को 217 मार्क्स मिले, हाईएस्ट मार्क्स, लेकिन उनकी रैंकिंग है 107। उनका नाम है जैनब सईद, 107 रैंकिंग घट गई हाईएस्ट मार्क्स लेने के बाद। आप देख रहे हैं कैसे मेंस और जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं आपको कितना ज्यादा उथल पुथल करते हैं। और फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट हैं सुकृति गुप्ता, जिन्होंने इंटरव्यू में सबसे कम मार्क्स पाए, और सबसे कम मार्क्स क्या थे हम ये देख चुके हैं, 83। उनकी रैंकिंग रही 706। इसका मतलब है कि रिटेन में उनको बहुत अच्छे मार्क्स मिले होंगे, 706 मतलब मिड में है, 1235 में वो लगभग बीच में है, तो मार्क्स तो रिटेन में इन्होंने बहुत अच्छा इन्होंने लिए होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट कि वो इंटरव्यू में कम रह गई। दोस्तों, नो डाउट इरा सिंघल ने रिटेन में बिल्कुल कमाल किया है, 920 नंबर हैं, और ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही कमाल की बात है, क्योंकि मैंने बताया कि अदरवाइज हमें उसे 800 के आसपास लेकर चलना चाहिए, और ये मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं इस तथ्य को कि आप लोगों के दिमाग से वो आतंक हटना चाहिए, वो हवा हटना चाहिए कि इतने मार्क्स हमको भी लाने हैं। आ जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आ जाते तब भी कोई बात नहीं, आप तो 800 को लेकर के चलिए, अगर उतने भी आप ले आते हैं तो बहुत अच्छी रेंज में आप पहुंच जाएंगे। इसके बाद है मित्रों, एक और इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास ओम मिश्रा ने भेजी है, बेंगलुरु ऑब्लिक हैदराबाद इन्होंने लिखा है, और उन्होंने जो लास्ट इंफॉर्मेशन दी है, एक स्टूडेंट है पूजा शर्मा जिनकी रैंकिंग आई है 1235, और इनको लोएस्ट रिटेन मार्क्स मिले हैं। अब आप इसको पहले के साथ मैच कीजिए फ्रेंड्स, 1235 इनकी पोजीशन है, रिटेन में लोएस्ट मार्क्स मिले, अब हम नहीं जानते, हो सकता है चलिए लोएस्ट मार्क्स मान लेते 533, और इनको इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले थे याद करने की कोशिश कीजिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि 1235 पोजीशन वाले को इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले हैं, 200। और बट ने चले कि चूंकि इंटरव्यू में 200 मार्क्स मिले, इसलिए रिटेन में बिल्कुल बॉर्डर पर थी वो, इसके बावजूद एटलीस्ट लिस्ट में तो नाम हो गया, सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में उनका नाम आ गया। तो मित्रों, ये मैंने कुछ आप लोगों को इंटरेस्टिंग डेटा प्रोवाइड किए हैं, और इसलिए कि जो डेटा होते हैं वो हमारे प्लान करने में हमारी मदद करते हैं, हमारे दिमाग में हमारी पोजीशन को बहुत क्लियर करते हैं, और हमें सही मायने में आगे के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता भी दिखाते हैं। मित्रों, अब मैं एक दो स्टूडेंट के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा। एक मेरे पास रितेश कुमार शाक्य हैं, इन्होंने अभी थर्ड बैच में आने वाले हैं, इन्होंने एक स्टूडेंट के बारे में लिखा है, और मैं समझता हूं कि बहुत इंस्पायरिंग है, वो है श्रीमती अंजलि सहरावत। انہوں نے ابھی جو اگزام تھا اس میں 64th رینک حاصل کی ہے اور youtube.com پر ان کا انٹرویو اویلیبل بھی ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے فرینڈز کہ جو انجلی سہراوت ہیں وہ 31 ایئرس کی ہیں. بریکٹ میں انہوں نے شاید لکھا ہے, تو اب پتہ نہیں اس شاید لکھنے کے کا پرپس کیا ہے. وہ پچھلے 9 سالوں سے سینٹرل اسکول میں پڑھا رہی ہیں, ان کی میرج ہو گئی ہے اور ایک بیٹا بھی ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں متروں, میرج ہو گئی ہے مطلب گھر سنبھالنا ہے, پتی اور پریوار کے جو دوسرے سدسیہ ہوں گے ان کی دیکھ بھال اور ساری چیزیں کرنی پڑتی ہوں گی, بیٹا ہے بٹ نیچرل کہ ان کو بھی سنبھالنا ہے, اور ساتھ ہی وہ سینٹرل اسکول میں پڑھا رہی ہیں, اور ایک دو سال سے نہیں 9 سال سے پڑھا رہی ہیں, اور ایج میں بھی وہ ایک ہائر سائڈ میں ہیں رائٹ. اور اس کے باوجود انہوں نے یہ سفلتا حاصل کی ہے. متروں ہم سب اپنے اپنے بارے میں سوچیں. ایک بہت خوبصورت دو لائنیں ہیں دوستوں, بہت دو لائن بہت پیاری سی لیکن بڑی چھوٹی چھوٹی لائن. اسے صرف اپنا ہی غم ہے, سچ میں وہ جانتا کتنا کم ہے. اسے صرف اپنا ہی غم ہے, سچ میں وہ جانتا کتنا کم ہے. ہم اپنی پریشانیوں کو کتنا بڑھا چڑھا کر دیکھتے ہیں کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا, مجھے گھر والے سپورٹ نہیں کرتے, میرا فلانا ہے یہ ہے وہ ہے. متروں میں تو روز سنتا رہتا ہوں, لیکن آپ کے سامنے کہانیاں ہیں جنہوں نے اس طرح کی سفلتائیں حاصل کی ہیں. فرینڈس ایک اور ہے امبکیش نے میرے پاس وشاکھاپٹنم سے, آپ بھی ہیں, ایک بہت اچھی انفارمیشن بھیجی ہے, اور وہ انفارمیشن یہ ہے متروں کی ایک 108th رینک اس بار آئی ہے مس اپرنا کی, 108th پوزیشن, اور مس اپرنا نے ایک لیٹر پوسٹ کیا ہے, ایک لیٹر پوسٹ کیا ہے. میں آج اس لیٹر کی چرچا نہیں کر رہا ہوں, آپ لوگوں کو صرف انفارمیشن دے رہا ہوں کیونکہ وہ انگلش میں ہے اور یہ بہت خوبصورت لیٹر ہے. کیوں خوبصورت ہے یہ آپ کو پڑھنے کے بعد پتا لگے گا. اور یہ لیٹر میں نے بھیج دیا ہے, یہ ہندی میں انواد ہو رہا ہے اور آج کسی بھی سمے یہ afis.com پر اویلیبل ہوگا, ہندی میں یہ لیٹر اویلیبل ہو جائے گا. آپ لوگ اس کو بہت دھیان سے پڑھیے گا, یہ آپ کی تیاری کے بارے میں بہت سارے سوتر پرووائڈ کرتا ہے, اسی لیے میں نے اس لیٹر کو ٹرانسلیٹ کرایا ہے. اس کے بارے میں ہم لوگ کل بات کریں گے, لیکن آپ لوگ یہ لیٹر پڑھیے گا ضرور, اور یہ ہمیشہ نالج سینٹر میں اویلیبل بھی, مطلب ہمارے afis.com پر اویلیبل بھی رہے گا. متروں ایک اور انفارمیشن ہے, وہ بھی انفارمیشن ایک انجلی سہراوت کی طرح کا ہی انفارمیشن ہے جو میرے پاس نریش منوت نے بھیجی ہے, جو فرسٹ بیچ کے میرے اسٹوڈنٹ رہے ہیں وشاکھاپٹنم سے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ ہیں ہریش چندر جن کی 309th رینک ہے, اور بڑی بات یہ ہے کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی انہوں نے یہ رینک حاصل کی ہے. متروں ان کے بارے میں صرف دو بات کہ وہ سلم ایریا میں رہتے ہیں اور ان کے جو پتا ہیں وہ دینک مزدور ہیں, ڈیلی ویزر ہیں جن کو ہم انگلش میں کہتے ہیں. آپ کلپنا کر سکتے ہیں متروں کہ کیا سپورٹ رہا ہوگا, کس طرح کا واتاورن رہا ہوگا, کس طرح کا سنگھرش رہا ہوگا, اور پھر اس کے ٹھیک پیرلل ان سب کو جیتنے کے لیے اوور کم کرنے کے لیے ان کے اندر ہریش چندر کے اندر کتنی بڑی آنترک شکتی رہی ہوگی. تو متروں آج کے موٹیویشن میں میں بس اتنی ہی باتیں شیئر کرنا چاہوں گا, اور مجھے لگتا ہے کہ آج کا موٹیویشن آپ کے لیے کسی بھی معنی میں کم اپیوگی نہیں رہا ہوگا. فرینڈس اب ہم لوگ آتے ہیں جو تھوڑا سا وقت بچا ہے, کیونکہ ہم نیوز کو بالکل مس نہیں کر سکتے. میرے پاس ڈھیر سارے انفارمیشنس ہیں, لاٹ آف انفارمیشن. یہ مت سوچیے کہ میں اسے بہت لمبا کھینچوں گا, جیسے ہی وہ چیزیں کمپلیٹ سی ہو جائیں گی ہم پھر اپنے پرانے پیٹرن پر آ جائیں گے. دوستوں جو اے آئی آر نیوز میں جو کچھ امپورٹنٹ باتیں تھیں, ڈیفینیٹلی جو سب سے جو امپورٹنٹ بات اس میں تھی وہ تھی ایران کے ساتھ جو سمجھوتا ہوا ہے. فرینڈس سول سروس کی تیاری کرنے والے اسٹوڈنٹس اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بڑی بڑی چیزوں سے آتنکت ہو جاتے ہیں, جیسے ایران کے ساتھ سمجھوتا ہوا ہے, ایک طرح سے اسے کہہ لیجئے کہ ایک پرمانو استر سمبندھی سمجھوتا ہے, اور یہ سمجھوتا ہوا ایران کے بیچ میں اور دوسری پارٹی میں ہے, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के जो पांचों मेंबर हैं, पांच मेंबर आपको मालूम है, जिसमें अमेरिका, चाइना, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, ये पांच देश होते हैं, और प्लस जर्मनी भी इसमें, ये छह देश और ईरान के बीच में समझौता हुआ है, राइट। इसका नाम है वियना समझौता। अब होता क्या है कि जिनके दिमाग में बड़ी बड़ी चीजें होती है, सिविल सर्विस एक बड़ा एग्जाम है तो तैयारी भी बहुत बड़ी होनी चाहिए, वो करते क्या है कि वो इसकी खूब तैयारी करेंगे। नो डाउट आपकी जो मैगजीन्स भी अभी आएंगी तो वियना समझौता के बारे में वो बहुत डिटेल में देंगे, उनका करेक्टर है, उनको देना ही चाहिए, है ना। क्योंकि जो मैगजीन आ रही है वो सिर्फ, ठीक है वो भले ही वो सिविल सर्विस की तैयारी की दृष्टि से ही है, लेकिन उसका उपयोग बहुत लोग करते हैं, तो वो बहुत डिटेल में देंगे और स्टूडेंट उन डिटेल्स में फंस जाता है। जबकि सिविल सर्विस की दृष्टि से आपको समझौते की केवल एक दो चीजें केवल मालूम होनी चाहिए, और साथ ही आपको जो परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में थोड़ी सी बातें मालूम होनी चाहिए, बस दैट्स ऑल, इतना सफिशियंट होगा। अब वियना समझौता के क्या क्या धाराएं हैं, क्या क्या तथ्य हैं, क्या क्या होने जा रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, लोग क्या क्या कह रहे हैं, इस तरह की ढेर सारी चीजों के चक्कर में पड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। फ्रेंड्स, इसी को ध्यान में रखकर मैं आपको दैनिक भास्कर की दो क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं। एक में दिया है कि शर्तें क्या हैं, और ये बहुत छोटे से में है, इसलिए जानबूझकर कि ये न्यूज क्लिपिंग्स दे रहा हूं। शर्तें क्या हैं, शर्त कुल यही है कि अब वो ईरान हथियार नहीं बनाएगा, मतलब परिष्कृत यूरेनियम का जो उसका भंडार है उसे 96% घटाना है। आपको मालूम है कि जो परिष्कृत यूरेनियम है उससे परमाणु बम भी बनाए जा सकते हैं, भारत उसका इस्तेमाल अपने एनर्जी के लिए करता है, बिजली के लिए करता है। दूसरा ये है कि वो जो अपने उसके जो संयंत्र हैं, इस तरह के जो एनर्जी या जो कुछ भी वो बनाता है इन परिष्कृत यूरेनियम से, उसके जो संयंत्र होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के लिए वो खोल देगा, ताकि आप आइए और देखिए, ताकि आपको यकीन हो जाए कि हम इसमें कोई हथियार नहीं बना रहे हैं, ये उसने मान लिए। ये दो मेजर इशू हैं बस। ईरान पर अभी तक प्रतिबंध था, ईरान के साथ दूसरे देश व्यापार नहीं कर सकते थे, ईरान एक पर निश्चित सीमा के बाद तेल का उत्पादन नहीं कर सकता था, सारे प्रतिबंध उस पर लगे हुए थे, जिसको लेकर के ईरान की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही थी। तो अब ईरान ने यह समझौता मान लिया है। अब आप देखिए कि अब आपको जो इसमें क्वेश्चन जो बनेगा, दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। नंबर एक की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका क्या प्रभाव होगा, जो बहुत मैं समझता हूं कि जिसकी संभावना 15-20% है सिविल सर्विस में पूछे जाने की। हाँ, लेकिन भारत को इससे क्या लाभ होगा या भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। मैं आपको बता चुका कि इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको भारत को ऐड करके देखना होगा। अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दो साल से वो कुछ इसी प्रवृत्ति के हैं। इस पर भी भास्कर का एक बहुत अच्छा न्यूज आइटम है, उसमें उन्होंने बताया है कि तीन चार चीजें। अब ईरान चूंकि तेल का उत्पादन प्रतिबंध हट गया है तो तेल का उत्पादन बहुत मात्रा में करने लगेगा, तो तेल की सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में घटेगी, और जब तेल की सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगी तो तेल की कीमतें घटेंगी। और आपको मालूम है कि भारत अपने जरूरत का लगभग 80% जो तेल है कच्चा तेल हम बाहर से मंगाते हैं, तो जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत घटेगी तो स्वाभाविक है कि भारत को फायदा होगा, विदेशी मुद्रा बचेगी, भारत को सस्ते कीमत पर तेल मिलेगा, इससे उसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, ईरान से खासकर भारत बहुत ज्यादा तेल आयात कर सकेगा, क्योंकि अभी तक लिमिटेड था प्रतिबंध के कारण, वो 90 लाख टन से ज्यादा मंगा नहीं सकता था, अब वो ईरान से ज्यादा तेल भी मंगा सकेगा। एक पॉइंट ये भी है फ्रेंड्स कि जो हमारा ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन है, जो ONGC है, उसने ईरान में गैस का भी पता लगाया था, गैस फील्ड का पता लगाया था, लेकिन प्रतिबंध के कारण वो आगे नहीं बढ़ सका था, तो अब उसको फिर से शुरू किया जा सकेगा। तो इस तरह से हमारे बीच ईरान के बीच में संबंध भी बढ़ेंगे। और बड़ी बात यह है कि ईरान एक शक्तिशाली देश था, लेकिन अभी प्रतिबंध के कारण वो थोड़ा सा घिरा हुआ था, तो अब वो एक तरह से जो मध्य एशिया का जो हिस्सा है या ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है उसमें भी एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करेगा। और प्रोमिनेंट रोल प्ले करने में जो सबसे बड़ा जो फायदा दिखाई दे रहा है कि वो हो सकता है कि वो ISIS की गतिविधियों को रोक सके ईरान, तो ये इस क्षेत्र में एक जो राजनीतिक स्थिरता या जो लोकतांत्रिक पद्धति या एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कह लीजिए, वो उसकी संभावना ज्यादा बन रही है। आप इस छोटे से आइटम को पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद बट नेचुरल है कि कुछ न्यूज़पेपर्स ने एडिटोरियल कमेंट भी लिखे हैं और डेफिनेटली कल के भी न्यूज़पेपर्स एडिटोरियल कमेंट लिखेंगे, मुझे ऐसा लगता है। उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया का है और इकोनॉमिक टाइम्स का है। इसमें नो डाउट कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एडिटोरियल कमेंट है वो बहुत अच्छा एडिटोरियल कमेंट है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, इकोनॉमिक सभी में अंडरलाइन किया हुआ है, ये आप लोग देख लेंगे। और दोस्तों केवल ये तीन चार चीजें आप ध्यान में रख लेंगे तो आपका उत्तर कंप्लीट हो गया, आपको बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। प्लीज इस माइंडसेट को मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा पकड़ के चलना चाहिए। फ्रेंड्स एक बहुत अच्छा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का भी है हेल्थ के ऊपर, इसको मैंने अंडरलाइन किया है, प्लीज आप लोग इसको जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हेल्थ के सेक्टर से क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। उन्होंने भारत को हेल्थ के लिए क्या क्या करना चाहिए अपने यहाँ के हेल्थ सिनेरियो को बदलने के लिए, उस बहुत अच्छे तरीके से और कुछ नए विचार भी उन्होंने दिए हैं, इसलिए मैंने साइड में भी अंडरलाइन कर दिया, मार्क कर दिया, इसको आप लोग जरूर देखेंगे। दैनिक भास्कर का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है फ्रेंड्स इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के, खासकर गूगल जो कह रहा है गूगल अर्थ कि वो 3D पिक्चर्स लेना चाह रहा है भारत को, तो भारत इस पर विचार कर रहा है कि परमिशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अगर वो परमिशन देते हैं तो भारत की जो निजता है और जो उसकी सुरक्षा है ये एक थ्रेट पर हो जाएगी, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, तो इसको लेकर के एक आर्टिकल है। और चूंकि इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी आपके सिलेबस में है, इस दृष्टि से ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। और दूसरे जो आइटम हैं आर्टिकल्स हैं वो आप लोग देख लेंगे, मैंने सभी में अंडरलाइन कर दिया है। फ्रेंड्स जो दूसरी बड़ी खबर थी वो FDI की थी कि मेक इन इंडिया करने के बाद से सितंबर में मेक इन इंडिया भारत ने शुरुआत की थी और FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इस बीच में 48% बढ़ी है, जो बहुत बड़ी बात है। एक फ्रेंड्स मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपके ध्यान में होना चाहिए, एक जो खबर थी वो थी कि महाराष्ट्र सरकार वहां के जो 10 बैंक हैं जो पब्लिक सेक्टर यूनिट के बैंक हैं उन पर कुछ कार्रवाई करना चाह रही है क्योंकि वो किसानों को ऋण देने का टारगेट पूरा नहीं कर सके। इसको लेकर के RBI ने थोड़ी सी आपत्ति की है और कहा है, वित्त मंत्रालय से कहा है कि नहीं ऐसा न किया जाए क्योंकि किसानों को ऋण देने के पीछे भी बहुत से फैक्टर्स काम करते रहते हैं, तो उन सब चीजों को कंसीडर किया जाए, सीधे सीधे बैंकों को इसके लिए दोषी न ठहराया जाए। तो मुझे लगता है कि पॉलिसी लेवल पर ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि कम से कम रिजर्व बैंक इस तरह के जो स्टेप्स हैं सरकार के उनको थोड़ा सा प्रतिबंधित करने की सोच रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, फिर हम लोग कभी इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर, ईमेल का चरण है, बहुत सारे ईमेल आए हैं मित्रों, तो सबसे पहले तो मैं उन्हें धन्यवाद दे दूं जो अभी असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम हुआ था उसमें बैठे, और मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हो रहा है कि उसमें ढेर सारे मेल आ रहे हैं। पहले भी इस पर मेल आ चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ऑडियो गाइडेंस में जो जिन टॉपिक्स को प्रोमिनेंटली डिस्कस किया गया, जो प्रोमिनेंटली क्लिपिंग्स प्रोवाइड की गई, उससे उनकी तैयारी में कितना अधिक फायदा हुआ है। ऐसे स्टूडेंट्स में बहुत से क्लास स्टूडेंट भी रहे हैं और कुछ सीधे ऑडियो से ही तैयारी कर रहे हैं। मित्रों इन दोस्तों में से कुछ के नाम हैं, राहुल कुमार जो सेकंड बैच के स्टूडेंट भी रहे हैं, अजीत सिंह, आशा कुमार और विपिन कुमार, अतुल सैनी अजमेर से हैं और सौर्य ग्रेटर नोएडा से। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब अंतिम रूप से सफल हों। एक मेल मेरे पास उदय प्रताप सिंह का भी है इलाहाबाद से, वो अभी इन्होंने UGC नेट क्वालिफाई किया है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज सब्जेक्ट से और रैंक आई है उनकी, फर्स्ट रैंक आई है और उन्होंने इसका श्रेय डेली आडियो को दिया है। तो उदय इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और अधिक तरक्की करें। आप श्रेय दे रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है, आडियो तो आ रहा है बह रहा है, इसमें से आप लोग कितना कितना किस किस पात्र में भरकर अपने लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं डेफिनेटली वो आप लोगों के ऊपर है, इसलिए मैं आप लोगों को अपने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं। फ्रेंड्स एक अनाउंसमेंट है और वो ये है कि सर्वोत्तम कुमार हैं जो नवादा पटना से आ रहे हैं अभी अक्टूबर की क्लास के लिए, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया है, तो जो भी उनसे कांटेक्ट करना चाहें जो उनके एरिया से आ रहे हों वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। सर्वोत्तम कुमार का नंबर है 9386624675। तो मित्रों अंत में मैं अब धन्यवाद देता हूं शेष बचे हुए अपने सभी ईमेल लिखने वाले साथियों को, कुछ के मैं नाम लेने जा रहा हूं, बहुत से स्टूडेंट्स के नाम छूट रहे हैं, उनसे माफी मांगते हुए उन सबको बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों इसमें एक मेल है प्रशांत मेवानी का, जो राजकोट से हैं, जो सेकेंड बैच के स्टूडेंट थे, बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड से की थी और इसके बाद वो क्लास अटेंड करने के लिए आए थे। तो प्रशांत बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे मित्रों के नाम हैं फ्रेंड्स, वो हैं सौरभ शर्मा, सिरीन, सुशीला गावड़े, श्यामवीर सिंह, आशीष मिश्रा विशाखापट्टनम से, अजय प्रसाद, विष्णु मारन भोपाल से, बीएस मीना जयपुर से, गौरव धीमान चंडीगढ़ से, पुष्पेंद्र शर्मा आगरा से, हेमंत कुमार इलाहाबाद से, उत्कर्ष दीप, अभिषेक चतुर्वेदी, सुनीता पाटीदार ग्वालियर से, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही हम आज के ऑडियो गाइडेंस को यहीं विराम देते हैं। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब आगे की बातें करेंगे। नमस्कार।